28।
और तब सिर कटी लाश के साथ साथ अदीब ने हिंदुस्तान में एक और हैबतनाक नजारा देखा, वो नजारा जो सदियों की सरहदों में फैला था। हिंदुस्तान नाम का एक ऐसा मुल्क उसके सामने था जिसके बाशिंदों की गर्दनों पर सिर नहीं थे, हर तरफ रुंड ही रुंड दिखाई दे रहे थे। बाजार खुले थे, मंदिरों मस्जिदों के दरवाजे भी खुले थे, चांदनी चौक की दुकानें भी खुली थीं, और बिना सिर वाले रुंड जगह जगह आ जा रहे थे। वे केवल धड़ ही धड़ थे। वे बात करते थे, मोल भाव करते, चीजें खरीदते, मंदिर मस्जिदों में पूजा इबादत के लिए जाते भी दिखाई देते थे। उनकी आवाज भी सुनाई पड़ती थी, और धड़ पर सिर न होने के कारण उनके बोलते हुए होंठ नहीं दिखाई देते थे, झपकती हुई आंखें नजर नहीं आती थीं। और ये खौफनाक नजारा सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे मध्य एशिया से लेकर तुर्की तक फैला हुआ था। पूरी इंसानी नस्ल की शक्ल ही बदली हुई थी। इतना ही नहीं, कुदरत भी नासाज थी। फूल तो थे पर उनकी खुशबू नदारत थी, खजूर भी थे पर वे सीठे हो गए थे, मधुमक्खियां आती तो थीं पर खजूरों से परहेज कर रही थीं, चिड़िया उड़ती थीं, मुंडेरों कंगूरों पर जाकर बैठ जाती थीं, लेकिन उनकी परवाज की कमी के कारण आसमान खाली था। रात भी होती थी पर निकलते ही सारे सितारे बुझ जाते थे। चांद पतझड़ के पत्ते की तरह कुमला जाता था। नदियां बह रही थीं लेकिन उनमें लहरें नहीं थीं। सूरज भी काला मातमी लबादा ओढ़कर निकलता था। अबाबीलें परेशान थीं कि दिन क्यों नहीं होता। गौरैया सहमी हुई फसीलों पर बैठी हुई थीं। यमुना नदी की मछलियों ने तैरना बंद कर दिया था क्योंकि लहरें नहीं थीं। खवासपुरी की तारीखी हवेली अभी भी कांप रही थी। तभी अदीब की नजरें शाहजहानाबाद के लाल किले की ओर उठीं। वहां किले की फसील, कंगूरों और फाटकों पर भी जो पहरेदार तैनात थे उनके हाथों में हथियार थे, लेकिन धड़ पर सिर नहीं थे। अजीब से इस माहौल को अदीब समझ ही नहीं पा रहा था। वो चीखा, अर्दली।
पृष्ठ 248।
अर्दली हाजिर हुआ। हुजूर, देखो मेरे सर पर धड़ है। अजीब ने पूछा। मौजूद है सरकार। तुम्हारे धड़ पर रखा हुआ सिर भी मुझे नजर आ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है कि बाकी लोगों के सिर नहीं है? अदीब ने पूछा। हुजूर, अर्दली ने कहा, इतिहास में ऐसे दौर बहुत बार आते हैं जब उस दौर के लोगों के सिर गायब हो जाते हैं। सोचना, समझना और सच की तहकीकात का सिलसिला खत्म हो जाता है। अदीब आलिया, हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। तो क्या ऐसे दौर में आंखें देखना भी बंद कर देती हैं? अदीब ने सवाल किया। नहीं हुजूर, जो भी घटित होता है उसे आंखें बराबर देखती हैं। तो फिर इन रुंडों, इन धड़ों की आंखें कहां हैं? हुजूर, वे लाखों करोड़ों आंखें एक दूसरा गमगीन और शर्मनाक नजारा देखने के लिए एक जगह जमा हो गई हैं। आंखों के उन पहाड़ों को देखिए। और तब जिंदा आंखों के पहाड़ देखकर अदीब का दिल दहल गया। आंखें ही आंखें। और तब वो फिर चीख पड़ा, ये लाखों करोड़ों आंखें कौन सा नजारा देखने के लिए उत्सुक हैं? हुजूर आलिया, औरंगजेब और रोशनारा ने अपना फैसला बदल दिया है। अब दाराशिकोह के धड़ को लाहौरी दरवाजे और उसके सिर को चांदनी चौक के चौराहे पर लटकाया जा रहा है। वो देखिए, नजर बेग इस काम को अंजाम दे रहा है। और अदीब ने लाखों करोड़ों आंखों की निस्बत से देखा। लाहौरी दरवाजे पर दाराशिकोह का धड़ झूल रहा था और चांदनी चौक के चौराहे पर एक लंबे नेजे की नोक पर दारा के सिर टंगा हुआ था। वहां भी देखने वाली आंखों के अंबार का पहाड़ मौजूद था। तभी दाराशिकोह का वो कटा हुआ सिर तेज आवाज में हंसने लगा। हंसता ही गया, एक भयानक जलजला सा आ गया। दारा के शिराजी कबूतरों ने उदासी से आवाज की तरफ देखा। वो दोनों पालतू अफ्रीकी शेर जो उसके दाएं बाएं रहते थे, जैसे आवाज को पहचान कर एक दूसरे को देखने लगे, इस आश्चर्य के साथ कि उनका मालिक वलीहद सल्तनत दूध माने तैमूरी और चंगेजी बुलंद इकबाल युवराज दाराशिकोह तो कभी इतनी जोर से हंसता नहीं था। चांदनी चौक के चौराहे पर लटका हुआ दारा के सिर अभी भी जोर जोर से हंस रहा था। आंखों के पहाड़ हैरत से उसे ताक रहे थे।
पृष्ठ 249।
दीवान खानाए इल्म में संस्कृत के विद्वान कुबत राय, कवि रंजन दास, वेदों के फारसी अनुवादक काशीनाथ, उपनिषदों का फारसी में तर्जुमा करने वाले द्वारका नंदन आदि सभी खामोश और उदास बैठे थे। चांदनी खाना के आतिशी फूलों के झाड़ कुम्हलाए हुए थे। वो फानूस जिनमें हजारों शम्में एक साथ जलती और रात के अंधेरों में भी जो दिन की दोपहर को कैद कर लिया करती थीं, आज जलने और रोशनी देने से इनकार कर रही थीं। वे तमाम कमसिन कनीजें जो तश्तरियों में भारी भारी काफूरी शम्में लेकर हमेशा हाजिर रहती थीं, वे भी अपने तश्त और तश्तरियां फेंक कर काले मातमी लबादे पहने खामोश खड़ी थीं। सल्तनत की सारी तोपें शर्मसार थीं। दारा शिकोह का घोड़ा फलक पैमा लाहौरी दरवाजे के पास अकेला खड़ा गमगीन और आंसू भरी आंखों से अपने मालिक शहजादे का लटका हुआ धड़ देख रहा था। उसके हाथी फतेह जंग की आंखें नम थीं। यमुना नदी में खड़ा बेड़ा उकाबे सुर्ख के शाही परचम मुर्दों की तरह लटके हुए थे क्योंकि हवा बंद थी। तभी चांदनी चौक के चौराहे पर दारा शिकोह का लटका हुआ सिर फिर एक बार जोर से हंसा। फिर एक जलजला आया। वो सिर बुलंद आवाज में बोला, वतन की खदमत दुनिया की सबसे बड़ी सादत और दीन की सबसे बड़ी इबादत है, वही हमने की है। वो बुलंद आवाज ब्रह्मांड में गूंजती रही। जमुना किनारे के पोखरों में उगे कमल फूलों ने यह आवाज सुनकर धीरे से आंखें खोली। जल मंजरी ने कान खोलकर इस आवाज को सुनना चाहा। तभी जैसे लाखों लोगों की नारे लगाती आवाजें गूंजने लगीं, महीन पोदे खिलावत वलीहदे सल्तनत चरागे दूध माने तैमूरी और चंगेजी शाह बुलंद इकबाल सुल्तान दारा शिकोह आजम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चांदनी चौक में दारा समर्थकों की कुछ लाशें अभी भी पड़ी सड़ रही थीं। उनके घावों में रेंगते कीड़े सहम से थम गए थे। साधुओं फकीरों और दरवेशों के रूप में घूमते औरंगजेब के जासूस सकते में आ गए। आखिर ये कैसी आवाजें थीं और किन की थीं? चांदनी चौक के चौराहे पर लटका दारा का सिर तो अकेला था, वहां कोई था ही नहीं, पर आवाजों का दौर थम ही नहीं रहा था। इन आवाजों की आवाज औरंगजेब तक पहुंची तो वो सोच में डूबा हुआ रोशनारा के महल की तरफ चल पड़ा। शहजादी रोशनारा से निगाह मिलते ही औरंगजेब ने झुककर सलाम किया और परेशानी भरी बातें बयान की।
पृष्ठ 250।
ये कैसे मुमकिन हो सकता है? लोगों के कान बज रहे होंगे। परवरदिगार तुम्हारे इकबाल की रोशनी पूरे सल्तनत में फैला चुका है, रोशनारा ने कहा। लेकिन आपा, हमारे जासूस गलत खबरें नहीं ला सकते। तो फिर नजूमियों ज्योतिषियों को बुलाकर फौरन इन आवाजों का सबब दरियाफ्त किया जाए। और नजूमियों ज्योतिषियों के आने में देर नहीं लगी। घनानंद ज्योतिषी ने बहुत सोच विचार करने के बाद बताया, बात यह है हुजूर आलिया कि दारा शिकोह के समर्थकों के दिलों में जो बातें मौजूद थीं वे उसके कत्ल के बाद भी मरी नहीं हैं। उनकी जख्मी उम्मीदें अभी भी उसके सिर के इर्द गिर्द मंडराती हुई शोर मचा रही हैं। इसी में मंजम शफीउल्ला ने टीप जोड़ दी, विद्वान घनानंद बजा फरमा रहे हैं हुजूर आलिया। इतना ही नहीं, दारा शिकोह की मुर्दा खोपड़ी अपना दरबार सजा रही है। उसमें उसके सिर कटे वजीर मनसबदार और उमरा हाजिर हो रहे हैं। नजर न आने वाले दरबार लगातार लग रहे हैं। ये तो खतरनाक है, औरंगजेब बेफर उठा। मुर्दों की इस बदमनी को फौरन से पेशतर खत्म करना होगा। इसका एक ही तरीका है, यहां बना, नजूमी अशफाक कुछ कहते कहते रुक गया। क्या क्या? यही कि सल्तनत के आम और औसत मुसलमान को बताया जाए कि शहजादा दारा शिकोह हिंदू परस्त हो गया था। उलेमाओं मुफ्तियों से उसी तरह फतवा जारी करवाया जाए जैसा कि आपने उस रात फैसला लिया था, जिस रात दारा शिकोह और सिपहर शिकोह को खवासपुरी की हवेली में कैद कर दिया गया था और आप सामने फैली घनघोर रात की स्याही को देख रहे थे। नजूमी अशफाक ठीक कह रहे हैं, लेकिन कोई दानिशमंद जैसा दरबारी मुखालिफत में उठ खड़ा हुआ तो? औरंगजेब ने रोशनारा से पूछा, आलमगीर? रोशनारा बोली, दानिशमंद जैसे दानिशमंद दरबारी बहुत कम होते हैं। उनकी बात और राय का तख्ता पलटने वाले तवज्जो खां हकीम जैसे लोगों की कोई कमी किसी भी सल्तनत और सत्ता के पास नहीं होती। बहुत मिल जाएंगे जो लगातार हमारे इरादों को अंजाम देंगे।
पृष्ठ 251।
रात बेहद अंधेरी थी, सितारे बुझे हुए थे। चांदनी चौक के चौराहे के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आकर अदीब बैठ गया। नजारा वही था, नीजे पर लटका दारा शिकोह का सर अकेला था, लेकिन लाखों आवाजों का शोर जारी है। वे आवाजें कभी थम जाती थीं, कभी और तेज हो जाती थीं। तभी अदीब ने देखा, खामोश रात के अंधेरे में एक शाही सुतमा जिस्म शेरवानी पहने उस चौराहे के पास आकर रुक गया। वो रुका, फिर चहलकदमी से करने लगा। वो शाही शख्स चलता तो जैसे उसकी शान में जागीर का पुराना पीतल का घंटा बजता था, वैसे वहां न कोई घंटा था और न कोई बजाने वाला। वहां तो सिर्फ नेजे की नोक पर लटका हुआ दारा शिकोह का सिर था। वो शाही शख्स कुछ देर गमगीन सा टहलता रहा, फिर वहीं पास पड़े एक पत्थर पर माथा पकड़कर बैठ गया। अदीब पीपल के पेड़ की मुंडेड़ से उठकर उसके पास गया और हैरत से देखा, वो तो उसी के समकालीन अफसाना निगार काजी अब्दुल सत्तार साहब थे। काजी भाई आप? अदीब हैरत से बोला, अरे भाई जान आप? काजी साहब ने भी उतने ही हैरत भरे अंदाज में कहा। फिर दोनों अदीबों ने एकाएक दारा के सिर की तरफ साथ साथ देखा। निगाहें नीचे उतरी तो काजी अब्दुल सत्तार ने कहा, भाईजान, यहां कोई इतिहासकार कभी लौट कर नहीं आएगा, लेकिन अपनी बिरादरी के हर सदी के अदीब को तो यहां आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दारा शिकोह ने एक तहजीब, एक इंसानी पद्धति, एक संस्कृति को जिंदा करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन तकदीर ने इसके हाथों से कलम छीन लिया और एक खूनी तलवार ने बनती हुई कौम की जन्म कुंडली पर रक्त की स्याही फेर दी। दारा का सिर एकाएक जोर से हंस पड़ा, दिशाएं कांपने लगीं। फिर हंसी थमी तो चांदनी चौक की सड़क पर टप टप पानी की बूंदें गिरने लगीं। लगा बादल रोने लगे, लेकिन नहीं, वो पानी की बूंदें नहीं, दारा शिकोह की आंखों से गिरते हुए आंसू थे। उन आंसुओं के साथ तभी आंखों के अलग अलग पहाड़ों से आंसुओं का एक सैलाब आया और एक गैब आवाज आई, आने वाली सदियों सुनो। बनती हुई इंसानी तहजीबें जुल्मों तले उसी तरह रोती और सिसकती रहेंगी, और दारा शिकोह की तरह कोई न कोई भविष्य दृष्टा इसी तरह हर सदी में सूली पर लटकाया जाएगा, और उसकी आंखों के आंसू ओस बन के धरती की घास पर छलकते रहेंगे। जो घास पर पड़ी इस आंसू भरी ओस को नहीं पहचान पाएंगे, वो अपने मुस्तकबिल, अपने भविष्य को कभी बदल नहीं पाएंगे।
पृष्ठ 252।
दोनों अदीबों ने चौंक चौंक कर चारों तरफ देखा, लेकिन आवाज का मालिक कहीं नजर नहीं आया कि एकाएक अर्दली ने हाजिर होकर उन्हें आगाह किया, हुजूर आलिया, भविष्य खुद अपने भविष्य को लेकर परेशान है, ये उसी की आवाज है। आवाज फिर गूंजने लगी, तुम देखना, बदलती दुनिया के दौर में कोई जालिम, कोई तासुबी, कोई धर्मांध शहंशाह अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होने पाएगा, लेकिन अत्याचारियों और इंसान परस्त ताकतों के बीच ये संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। हर सदी में एक दारा शिकोह के साथ एक औरंगजेब भी पैदा होगा। इस दस्तूर को बदलना होगा, नहीं तो मेरे साथ साथ तुम सबका भविष्य भी डूब जाएगा। अगर मैं मर गया तो तुम्हारे सारे सपने समाप्त हो जाएंगे। नहीं भविष्य, हम धूप पर पड़ी आंसुओं की ओस को पहचानेंगे, हम अपने सपनों और तुम्हें मरने नहीं देंगे। दोनों अदीब चीख पड़े, लेकिन भविष्य तिरोहित हो गया। और बजते ढोल और नगाड़ों की आवाज के साथ औरंगजेब के इस्लामी उलेमाओं के फतवों का ऐलान होने लगा। बिरादरान इस्लाम, जो खतरा हिंदुस्तान की खिलाफत इस्लामिया के सिर पर मंडरा रहा था, वो खत्म हो चुका है। हिंदू परस्त दारा शिकोह, जिसको नमाज से नफरत, रोजे से अदावत, हज से परहेज और जकात से नफरत थी, वो तख्त ताउस पर ناپاک قدم رکھ کے شہنشاہی کے منصوبے بنا رہا تھا۔ وہ خدا کا منکر تھا، وہ ہندو پربھو کے نام پر آرسی، انگوٹھی اور مکٹ پہنتا تھا۔ وہ منکر ہندو یوگیوں، سنتوں کی دعا اور راجپوتوں کی تلواروں کا سہارا لے کر اس جنت نشان ہندوستان سے اسلام کو خارج کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ برادران اسلام، ایسے شخص کے بارے میں سب قاضیوں اور مفتیوں کا فتویٰ ہے کہ اس کے خلاف اٹھائی گئی تلوار ایک جہاد تھا، جہاد اکبر تھا۔ فتویٰ سن کر نیزے پر ٹنگا دارا کا سر ہنسا، پھر کائنات میں زلزلہ آیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جامع مسجد کے پاس منادی سنائی دی، وہی شاہی اعلان جاری تھا۔ دارا کا سر پھر ہنسا۔
پرشٹھ 253۔
مغرب کی نماز ہو چکی تھی۔ چاندنی چوک کا وہ بازار جو چراغوں، مشالوں، شموں، جھاڑوں سے آباد رہتا تھا، خاموش اور بے نور تھا۔ جو سڑکیں اور گلیاں عطر لگے کپڑے پہنے پھولوں کے گجروں سے سجے دھجے لوگوں کی بھیڑ سنبھال نہیں پاتی تھیں، وے ویران تھیں۔ بھڑکیلی وردیاں پہنے جن کہاروں کے مضبوط کندھوں سے پالکیاں گزرتی تھیں، وے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ جامع مسجد کے آس پاس کی دکانوں میں جہاں بادامی کاغذ کی کتابوں سے لوگ داستانیں پڑھا کرتے تھے، وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھیں۔ دکانوں کے آس پاس چاندنی بچھے تختوں پر گاؤ تکیوں کے سہارے بیٹھے جو بزرگ حقے گڑگڑاتے تھے، ان کا خوشبودار دھواں ندارت تھا۔ فالودے اور شربت کے جو چاندی والے گلاس رقص کیا کرتے تھے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ تبھی دو تین شاہی سینکوں کے ساتھ دوسرا منادی والا نگاڑا پیٹ پیٹ کر اعلان کرنے لگا، خلق خدا کا، حکم شہنشاہ کا۔ بحکم شہنشاہ ہندوستان عالمگیر اورنگزیب صاحب عالم، رعایا کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ کوئی سرکٹا شخص بخشا نہیں جائے گا، سارے دھڑوں کو اپنے سر گردنوں پر لگانے ہوں گے۔ کوئی بازار، کوئی دکان بند نہیں رہے گی، سارے کام بدستور جاری رکھے جائیں گے۔ خبر دیتا منادی والا آگے بڑھ گیا تو باورچی جمن کے نعمت قدے میں ہلچل شروع ہو گئی۔ بڑی انگیٹھیوں کے دہانے دہکنے لگے، دیگیں چڑھا دی گئیں اور پکتے گوشت کی مہک چاروں طرف پھیلنے لگی۔ خریداروں کی بھیڑ جمع ہونے لگی، بدکہی ہونے لگی۔ شیریں رکابدار کی دکان خوشبودار حلووں، مربوں اور مٹھائیوں سے دلہن کی طرح سج گئی۔ لمبی چوڑی سلیں گلاب جل سے دھو ڈالی گئیں، ان پر پہلوان آدمی باہوں میں چاندی کے تین تین گھنگرو باندھے بھنگ پیسنے لگے۔ بجتے گھنگریوں کی آواز لوگوں کو بلانے لگی، حقے تازے ہو گئے۔ مراد آبادی تمباکو کی خوشبو اڑنے لگی، جگہ جگہ آ کر کچھ لوگ بدکہی کا بازار گرم کرنے لگے۔ شکر ہے اللہ کا، عالمگیر اورنگزیب نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی، ورنہ کہیں دارا جی مہاراج تخت نشین ہو جاتے تو 700 برسوں کی اسلامی حکومت دیکھتے دیکھتے غارت ہو جاتی۔ دوسرے مجمع میں کسی اور نے پہنچ کر باورچی جمن کی دکان پر بحث چھیڑ دی، ارے میاں، غنیمت ہے کہ یہاں کھڑے ہریسا کھا رہے ہو۔ دارا شی کو اگر تاج پہننے میں کامیاب ہو جاتا تو ہندوستان میں تم گوشت کھانے کے لیے ترس جاتے، اور کیا، ضلع سبحانی تو آخری گھڑیاں گن رہے تھے۔ تینوں شہزادے سینکڑوں میل دور اپنے اپنے صوبوں میں بے خبر بیٹھے تھے۔ دارا جی مہاراج نے بادشاہت کا انتظام پختہ کر لیا تھا، وہ تو شاہی جلوس کیا چاہتا تھا۔
پرشٹ 254۔
ایسا؟ تیسرے اور چوتھے پانچویں مجمع میں بھی لوگ بحثوں میں الجھے ہوئے تھے۔ جگہ جگہ پہنچ کر بحث کی شروعات کچھ خاص لوگ ہی کر رہے تھے، وہ چنگاری لگا کر اگلے مجمع کے لیے کہیں اور بڑھ جاتے تھے۔ چلتی باتوں کی مجلسیں جاری تھیں۔ ارے یہ تو کھلی بات ہے کہ دارا کے دربار میں وید اپنشدوں کے ودوان ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ میر منشی چندربھان تو ان میں خاص تھا۔ ویدوں کا فارسی میں ترجمہ کرنے والا کاشیناتھ، اپنشدوں کا ترجمہ کار دوارکا نندن، سنسکرت کا پنڈت کتب رائے اور کویراج رنجن داس تو تھے ہی اس کے خاص الخاص۔ سنا ہے کہ اس کے سرحان قد آدم شمادان کے سائے میں سنہری روپہلی تپائیوں پر ویدوں، اپنشدوں اور تصوف پر عربی ایرانی کتابوں کی سونے کی پانی سے لکھی جلدیں سجی رہتی تھیں۔ کفر کفر، ارے जब वो कंधार की जंग में गया था तो जंगी हाथियों, हजारों घुड़सवारों, तोपों, तीरंदाजों, पैदल बंदूकचियों, तोपचियों, बेलदारों, संगतराशों, भिष्टियों, खादिमों के पूरे कारखाने के साथ साथ 5 ऊंटों पर हिंदू धर्म ग्रंथ और सूफी संतों की किताबें लाद कर ले गया था। 5 हाथियों पर संस्कृत, अरबी और फारसी के पंडित, आलिम और कवि, भाष्यकार, ज्योतिषी, सन्यासी और योगी सवार थे। वैसे भी उसके निजी दीवान खाना इल्म में मौजूद तख्त पर हिंदू भगवान शंकर की तस्वीर साया किए रहती थी। खुद उसके सीने पर पड़ी अलमास की आरसी में शिव की तस्वीर खुदी थी। दाहिने हाथ की अंगूठी में संस्कृत भाषा में प्रभु लफ्ज लिखा था। कौन नहीं जानता कि वो हिंदू हो गया था? नहीं नहीं, था तो वो मुसलमान ही, लेकिन जरूरत से ज्यादा वो हिंदू परस्त हो गया था। अगर वो तख्ते ताउस पर काबिज हो जाता, शहनशाही ताज पहन लेता, तो वो हिंदू गर्दी होती, मुगलिया सल्तनत का खात्मा हो जाता। दारा का लटका हुआ सिर बहुत जोर से हंसा, इतनी जोर से कि किले की फसील पर बुर्जों पर बैठे कबूतर घबरा के उड़ गए। आलमगीर औरंगजेब के महल में जब हंसी की तेज आवाज धमक के साथ गूंजने लगी तो वो घबराया, उसके माथे पर बल पड़ गए, आंखें सिकुड़ गईं, वो तेजी से उठकर खड़ा हो गया।
पृष्ठ 255।
और रोशन आरा के महल की ड्योढ़ी में शोर हुआ। महल का रखवाला ख्वाजा सरा फहीम चौंका, दौड़कर एक खवास ने इत्तला दी, आलम पनाह आलमगीर इधर ही तशरीफ ला रहे हैं। भरे जिस्मों, शरबती आंखों और सुनहरे बालों वाली उज़्बेकी पहरेदार औरतें सतर्क हो गईं। सफेद लिबास पहने हबशी कनीजें हुक्म जलाने के लिए सचेत हो गईं। खबर पाते ही रोशनारा दौलत खाने से बहती पतली संगमरमरी नहर के बाजू आकर खड़ी हुई और अपने भाई का इंतजार करने लगी। औरंगजेब आया, सारे खवासों खादिमों को इशारा किया गया, एकांत में दोनों की बातचीत होने लगी। मशवरे के बाद तय पाया गया कि दारा की मैयत को दफन कर दिया जाए ताकि उसका कटा हुआ सिर हंसने की गुस्ताखी न करे, और मशवरे के मुताबिक मैयत को गुसल और कफन दिए बगैर हुमायूं के मकबरे में जमीन दोज कर दिया गया। लेकिन हैरत की बात थी कि चांदनी चौक के चौराहे पर लोग अब भी दारा का कटा हुआ सिर देखते हैं और उन्हें उसका हंसना भी सुनाई पड़ता है, लेकिन अब तो वहां खड़ा पीपल का पेड़ उसके साथ साथ हाथ हिला हिला कर हंसता था। उस पीपल के साथ ही सल्तनत के सारे पीपल के दरख्त एक साथ हंसते थे और दहशत सा छा जाता था। दहशत भरे इस माहौल में तभी एक गमगीन तराना उभरा। ऐसे जन बिरले जंग अंदर परख खजाने पाइया, जाति बरनते भय अतीता ममता लोभ चुकाइया। ये गमगीन तराना चारों दिशाओं से गूंजने लगा और एक सूत्रधार सामने आया। उसने ऐलान किया, दुनिया के दर्शकों, मैं सदियों का नुमाइंदा और एक नाटक का सूत्रधार हूं। जो कुछ तुम आज देख रहे हो उसके कारण मेरी सदी में मौजूद हैं। हिंदू जाति पराभव के कगार पर है। हिंदुओं के चारों वर्ण छोटी छोटी जातियों उपजातियों में बंट चुके हैं। हर जाति खुद को दूसरे से ऊंचा समझती है। जाति पात का भेदभाव चरम पर है। हिंदू मिथ्या अहंकार का शिकार है। इसीलिए गुरु नानक का वचन बंजारे की तरह भटक भटक कर कह रहा है, इस दौर में जात पात और वर्ण के झूठे अभिमान से ऊपर उठा हुआ और मोह लोभ से मुक्त कोई व्यक्ति नहीं है। ब्राह्मण तो कर्मकांड का सहारा लेकर बाकी जनता पर अत्याचार कर रहा है।
पृष्ठ 256।